कर्मकांड लेक्चर नंबर 20। ॐ नमः सिद्धये कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा की का जो गुंडारी भाषा में लिखी है और उसका हम हिंदी अनुवाद देख रहे हैं और अपनी अनुभाग बंद संबंधी चर्चा चल रही है। अनुभाग बंद में देखो यहाँ तो अनुभाग बंद में जब हम बात करते हैं तो वो पहले हमें ये सोचना है कि वो प्रशस्त प्रकृति है कि अप्रशस्त है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग ऊपर के गुणस्थान में जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वह उनका अनुभाग ही ज्यादा होगा। ऊपर के गुणस्थान कहते समय आतप और उद्योत ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती है तो उसके लिए हम वहाँ मिथ्या दृष्टि को या मनुष्य तीन चाहिए जो भूभूमि संबंधी है वो भी मिथ्या दृष्टि बांधता है उसके लिए हम ऊपर के गुणस्थानों में एक कंडीशन नहीं लगाएंगे। अन्य जो समय दृष्टि के बनती है ऊपर के गुणस्थानों तक बनती है तो जहाँ वो विशुद्धि ज्यादा होगी वहाँ उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है और जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं वो मिथ्या दृष्टि के संक्लेश परिणाम वालों के वो उत्कृष्ट बनेंगे उत्कृष्ट अनुभाग सही बनेंगे। अब हम यहाँ आए हैं पेज नंबर 189 पर। यहाँ 180 के ऊपर लाइन लिखे देखो अनुभाग किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न करने पर उस अनुभाग का स्वरूप पहले घाती कर्मों में कहते हैं। यहाँ अनुभाग का स्वरूप कहते समय केवल उनके नाम लेकर कुछ उसका स्वरूप बताने की कोशिश की है। पहले हमने देखा था अनुभाग किसमें नापेंगे तो अविभाग प्रतिच्छेदों में जो शक्ति का अंश है फल देने की शक्ति किसमें नापेंगे अविभाग प्रतिच्छेदों में तो उसको हम क्या कहेंगे जिन जिन में समान अविभाग प्रतिच्छेद है ऐसे परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहेंगे। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई अनंत वर्गणाओं का समूह है उसको हम स्पर्धक कहेंगे। बीच में एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाएं बीच में नहीं पाई जाती एकदम दुगुना पहली वर्गणा से दुगुना वर्गणा होती वहां से दूसरा स्पर्धक तीन गुना वहां से तीसरा स्पर्धक चार गुना वहां से चौथा स्पर्धक ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। ऐसे अनंत स्पर्धकों के यानी नीचे के स्पर्धक यानी जगह में अनुभाग वाला और उत्कृष्ट यानी अनुभाग अधिक ऊपर के स्पर्धक स्पर्धक में वो स्थिति की बात नहीं कर रहे केवल अनुभाग की अपेक्षा नीचे और ऊपर कह रहे हैं। स्थिति की अपेक्षा प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग पाए जाते हैं ये बात ख्याल में ये इसकी हमने कल चर्चा की। अब जहाँ हम ये अनुभाग की अपेक्षा जो अनंत स्पर्धक बताए जाते हैं उसको चार में विभाजित करके बताते हैं उसमें उसके नाम बताएंगे लता भाग वाले दारू भाग वाले अस्थि भाग वाले चैत भाग वाले एक एक भाग वाले में भी अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं उसके नाम लेकर यहाँ बात बता रहे हैं उसके अभी चर्चा हम करेंगे। पेज नंबर 189 और 180 नंबर का पृष्ठ है सॉरी 180 नंबर की गाथा है पृष्ठ 189। देखो घाती कर्म कौन से ज्ञानावरण दर्शन और मोहिनी अंतराय की शक्ति अर्थात स्पर्धक ये शक्ति तो हम मुख्य रूप से स्पर्धक का नाम लिया, एक एक परमाणु एक एक वर्गणा की बात गौण करके स्पर्धकों का नाम लिया।
स्पर्धक हो गए तो लॉट हो गए।
हाँ, पूरा एक एक लॉट होते स्पर्धक, यानी एक एक स्पर्धक में भी अनंत वर्गणाएं अलग अलग होती है। तो वो स्पर्धक उसी की बात करिए, स्पर्धकों के फॉर्म में अभी बताएंगे। तो वो कैसे कैसे, तो लता दारुष अस्थि और शैल की उपमा वाले चार प्रकार के होते हैं। ये नाम लेकर उनको, इन्हें उपमा देकर उनका अनुभव बताने की कोशिश की। लता भाव वाले ने मंद अनुभव वाले, उससे तीव्र अनुभव है उसको कहेंगे दारु भाग वाले, और तीव्र अनुभव है तो कहेंगे अस्थि भाग वाले, और तीव्र अनुभव है तो शैल भाग वाले। जैसे लता है बेल जो है कैसे नरम है, उससे दारू का अर्थ होता है सूखी लकड़ी काष्ठ, वो उससे कठिन है। अस्थि है हड्डी, उससे कठिन है। और शैल जो पत्थर पहाड़ जैसे पत्थर होते हैं वो तो सबसे कठिन है। इनकी उपमा देकर घाती कर्मों के अनुभाग को बताया जाता है। तो लता भाग वाले अत्यंत मंद अनुभाग वाले, अभी उसमें भी सर्वघाती देशघाती का ये सब कर करके हम यहाँ समझाएंगे बाद में। फिर पढ़ते हैं, ये जो घाती कर्मों के जो अनंत स्पर्धक है, उन अनंत स्पर्धकों में चार नामों से बताया जाता है। कौन से है? लता दारु अस्थि और शैल। कौन से थे आपके? हाँ, ये अनुभागों के उसके स्पर्धकों के नाम। वहाँ लता अर्थात बेल, दारु अर्थात काष्ठ, अस्थि अर्थात हड्डी, शैल अर्थात पाषाण यानी पर्वत, जैसे क्रम से उत्तरोत्तर अधिक अधिक कठिन है, कठोरता युक्त है, वैसे स्पर्धक, स्पर्धक किसको कहना, अर्थात वर्गणाओं के समूह, उसको स्पर्धक कहा। वे कैसे है? लता भाग, दारु भाग, अस्थि भाग, शैल भाग, इस तरह चार प्रकार के हैं। यानी सभी घाती कर्मों के लिए, भले वो मोहिनी के हो, ज्ञानावरण के हो, दर्शनावरण के हो, सबके अपने अपने जुदे जुदे, सबके मिलकर लता भाग वाले से नहीं कहेंगे। ज्ञानावरण के जो स्पर्धक, प्रत्येक प्रकृति जुदी है, तो हरेक में ये लता दारु अस्थि और शैल वाले उसमें स्पर्धक पाए जाएंगे हरेक प्रकृति में। तो उनमें अनुक्रम से अपने फल देने की शक्ति रूप अनुभाग अधिक अधिक जानना। घाती कर्मों में अनुभाग ज्यादा है, ज्ञानावरण में अनुभाग ज्यादा है, उसका अर्थ क्या है? ज्ञानावरण में अनुभाग ज्यादा है, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान की हीनता है, प्रशस्त प्रकृतियां है ना। आवरण में अनुभाग ज्यादा, यानी ज्ञान हीन रूप पर वहाँ लता भाग से दारु भाग के अनंत वे भाग तक। देखो ये चार नाम याद आए ना, हम उसके नाम को भी या फिर दोबारा देखेंगे। वो लगाया है ना सर, लगा लगाया ये वाली शैल अस्थि दारु और लता, नहीं उसी में हमको सर्वघाती देशघाती भी पता नहीं। ठीक है, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। ये घाती कर्मों के शब्द स्पर्धक कैसे? लता दारु अस्थि और शैल। घाती कर्मों में कितने प्रशस्त प्रकृतियां हैं? एक नहीं, सभी अप्रशस्त है। अब अघाती कर्मों में क्या भेद है? कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं, कुछ अप्रशस्त है। हमने देखा ना साता वेदनिया है, प्रशस्त में साता वेदनिया है। फिर शुभ नाम कर्म में शुभ नाम कर्म प्रशस्त प्रकृतियां देखी थी, तीन आयु प्रशस्त थी, उच्च गोत्र प्रशस्त था, और अप्रशस्त में उनको छोड़कर जो बाकी जो थी वो सारी अप्रशस्त मिली। तो प्रशस्त प्रकृतियों को बताना है तो उनके नाम कैसे, यानी मंद से तीव्र तक, गुड़ खांड शर्करा और अमृत, ये किसके नाम हुए? हाँ, प्रशस्त अघाती के प्रशस्त, और अघाती के अप्रशस्तों के नाम क्या है? नीम गांजीर विष और खला। इसमें जैसे कड़वाहट अधिक अधिक है, उस अपेक्षा से जहाँ अप्रशस्त में मंद अनुभाग वो है नीम वाले, कांजी ये कड़वे ज्यादा है, उससे विष ज्यादा कड़वा है, उससे हलाहल वो तीव्र, इसमें मिठास ज्यादा है, गुड़ खान शक्कर अमृत। कभी कभी इनको नाम लेके कहेंगे, कभी कभी कहेंगे जो ये चतुष्थान का बंदा है, नहीं इतना सभी अमृत का बांध हो रहा है, नहीं नहीं पहले जघन्य स्पर्धक से लेकर ऊपर के सभी स्पर्धक वहां है, उसको कहेंगे चतुष्थान का बंदा है। कभी कभी शर्करा तक गुड़ खान शर्करा ने, ये तो हो गया ना, यहाँ जहाँ इसका बंध है हमेशा, जैसे हमने निषेकों में कैसे पहले निषेक से ऊपर के निषेक तक बताते, ऐसे यहाँ जघन्य स्पर्धक से ऊपर के सभी स्पर्धक हो गए, तो प्रशस्त में अमृत तक का बंध हो जाए तो उनको कहेंगे चतुष्थान बंध। ये भी आने वाली बात है बाद में, जब कहेंगे गुड़ खांड और शर्करा तक ही बंध है तो कहेंगे त्रिस्थान बंध, और गुड़ और खांड जैसे है उसको कहेंगे द्विस्थान बंध। वैसे अप्रशस्त में चारों का होगा तो चतुष्थान बंध इसको कहेंगे, तीन का बंध होगा त्रिस्थान बंध होगा या द्विस्थान बंध होगा। यहां भाती कर्मों में तो ये चतुष्थान तो वही हो सकता है, त्रिस्थान भी द्विस्थान, या तो लता वाला अकेला भी होगा शपथेदी में, यहां ऐसे द्विस्थान तक यहां बात होती है अघाती में। अब यहां हमसे हम पढ़ेंगे यहां से देखो, अब इसमें जो देशघाती और सर्वघाती का जो है ना, उसके लिए हम नेक्स्ट चार देखेंगे, अभी 14 नंबर का चार है ना आपके पास, पेज नंबर 190। पहले हम पुस्तक में से पढ़ेंगे फिर चार पर देखेंगे। वहां लता भाग से लेकर दारू भाग के अनंतवे भाग तक जो स्पर्धक है वे देशघाती है। देशघाती, देश यानी पार्षद, घात यानी वो प्रकट नहीं हो रहे दे रहा, यानी कुछ घात है परंतु पूरा घात करने के लिए समर्थन नहीं है, इसको कहते हैं कि लता भाग से लेकर दारू का अनंत भाग वो देशघाती स्पर्धक है। इनका उदय होते हुए भी आत्मा का गुण प्रकट रहता है। दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग को छोड़कर, जिसको हम कहेंगे अनंत बहुभाग यानी ऊपर की ओर, उसमें से यानी दारू का अनंत बहुभाग, फिर अस्थि वाले और शैल वाले, ये सारे कैसे हैं, सर्वघाती स्पर्धक है। देखो हम ये फिर दोबारा प्रकृतियों पर विघटित करके दिखाएंगे आपको, पहले भी हमने देखा था सूक्ष्म में, अभी बोर्ड पर भी देखेंगे दोबारा। इसको पढ़ते देखो, लता भाग से लेकर दारू भाग के अनंतवे भाग तक जो स्पर्धक है, देखो ये लता भाग वाले, दारू भाग वाले, अस्थि वाले, शैल वाले अपने अपने अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं। लता भाग में भी अनंत स्पर्धक है, वो सर्व कैसे है तो देशघाती स्पर्धक है। ये दारू वाले है उसके अनंत भाग करना, अनंत अनंत स्पर्धक है, उसका अनंतवे भाग प्रमाण जितने स्पर्धक है वो कैसे है, वो इसको एक भाग कहा। जैसे हमारे पास 1000 है और 1000 का हमने 10वां भाग किया तो 1000 के 10वें भाग की वैल्यू कितनी है, 100, और रिमेनिंग 900 वो बहुभाग कहेंगे। ऐसे जितने अनंत है उसको अनंत का भाग देना, तो एक भाग रूप है वो नीचे हम देशघाती स्पर्धक कहेंगे, और उसके ऊपर की ओर अनंतवा भाग छोड़ो तो बाकी रिमेनिंग जो बहुभाग है उसको अनंत बहुभाग कहेंगे, वो उसके ऊपर के साथ लेना, यानी दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि वाले सारे और शैल वाले सारे सर्वघाती स्पर्धक है। यहां तक समझ में आए, ये जो चार नाम है कौन से कर्मों पर लगा रहे हैं हम, घाती कर्म, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतराय। अब ज्ञानावरण की बात करेंगे, ज्ञानावरण में ये चारों प्रकार के स्पर्धक है कि नहीं है, अभी उसमें हम केवल ज्ञानावरण की बात करेंगे। ये ऊपर लिखा है हमने, घाती कर्मों में कुछ प्रकृतियां सर्वघाती भी है और कुछ देशघाती भी है, ये हमने पहले देखा था शुरुआत पहले लेक्चर में। जैसे ज्ञानावरण 5 प्रकृतियां है, उसमें सर्वघाती प्रकृति कौन सी है याद है का, केवल ज्ञानावरण, और बाकी 4 है वो देशघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। अब मुझे बताओ केवल ज्ञानावरण के स्पर्धक कौन कौन से हो गए इसमें से, हाँ, ये दारू का भूभाग 80 और 6, यानी केवल ज्ञानावरण कितना भी मंद क्यों ना हो वो सर्वघात ही करेगा। थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट है, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रदेशों में केवल ज्ञान होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा ही उसका केवल ज्ञान तो है ही नहीं, जब वो 13वें गुण स्थान में जाएगा तभी वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब हम बाकी देशघाती प्रकृति कौन सी है, कोई भी एक ले लो, मति ज्ञानावरण, ये है प्रकृति देशघाती। उसमें स्पर्धक कैसे कैसे है, सर्वघाती भी और देशघाती भी है। यानी मति ज्ञानावरण के स्पर्धक कैसे, लता वाले भी है। दारू का एक भाग तक वो तो देशघाती स्पर्धक है, उसी में मति ज्ञानावरण में ही दारू का भूभाव, अस्थि, शैल, ये सब सर्वघाती स्पर्धक है। यानी मति ज्ञानावरण में चारों ही प्रकार के स्पर्धकों का बंध भी हो रहा है, सत्ता में भी पड़े हैं। अब जो उदय में आते हुए क्या होगा, हाँ वो अगर सर्वघाती का उदय हो जाए तो मति ज्ञान से रहित हो जाए, जीव जड़ हो जाए। तो देशघाती उदय के समय देशघाती होकर उदय में आ रहा है,
भले वो सर्वघाती,
हाँ भले वो सर्वघाती, वो सर्वघाती पना उसके उदय के समय में नहीं रहता है।
वो फैसिलिटी केवल ज्ञान में नहीं है,
केवल ज्ञान में हो जाए तो थोड़ा देशघाती केवल ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान प्रकट रहेगा, ऐसा नहीं होता है।
खाली
अभी अवधि ज्ञानावरण में देशघाती प्रकृति है, हाँ वो प्रश्न है ना, उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक है, देशघाती स्पर्धक है। अभी आपको अवधि ज्ञान नहीं भैया, नहीं अच्छा, अच्छा है, नहीं तो लाइन लग जाती आपके पास। तो उसमें स्पर्धक तो चारों पड़े हैं, तो उसके उदय में ये सभी उदय रूप हो गए, पर वो सर्वघाती पड़े हैं तो उसमें थोड़ा अवधि ज्ञान प्रकट ऐसा नहीं हो सकता। यानी अभी हम आपको अवधि ज्ञान नहीं है तो हमारे सर्वघाती रूप से उदय चल रहा है।
तो इसमें भी ऐसा क्या दीर्घघाती सर्वघाती को सर्वघाती होकर,
अब वो टर्न होने की जरूरत नहीं, वहां सर्वघाती पड़ा ही है ना, उसका तो उदय रूप निषेक में कुछ भी अनुभाग हो उसका फल किस रूप से मिल रहा है दीदी, सर्वघाती रूप, उसको संक्रमण नहीं कहते हैं, परंतु उदय रूप जो थ्यूक संक्रमण ऐसा नाम आता है उसमें, तो वहां उस रूप से उसका उदय चल रहा है, ऐसा नहीं है उसका। उदय किस रूप से है, तो सर्वघाती रूप से उदय चल रहा है।
तो हमारा अभी केवल ज्ञान का स्पर्धक उदय रूप सर्वघाती होके,
अरे सर्वघाती ही है वो कायम, केवल ज्ञानावरण की बात करें,
केवल ज्ञानावरण
हमेशा सर्वघाती ही रहेगा,
उसका उदय अभी
उदय भी
वर्तमान में सर्वघाती होके नीचे गिर रहा है।
अरे नहीं, सर्वघाती होके कहाँ, उसमें देशघाती है ही नहीं है,
ऊपर से नीचे तक सर्वघाती,
सभी सर्वघाती, क्योंकि केवल ज्ञानावरण यहाँ तक ही है उसके, उसमें ये स्पर्धक ही नहीं है, केवल ज्ञानावरण में ये नीचे के स्पर्धक ही नहीं, यहाँ तक ही उसकी लिमिट है, उसमें सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है। मति ज्ञानावरण में दोनों है, ख्याल में आता है ना। अभी इसमें भी जो बहुत सारे भेद है ना, जैसे हम सबसे जघन्य एक नंबर देंगे इसको, एक नंबर का ज्ञान, दो नंबर का ज्ञान है, तीन, 100 तक के ज्ञान है ना, जैसे संगी पंचीन थी उसका ज्ञान का उभार ज्यादा है, और वो निगोध है उसका मिनिमम ज्ञान का उभार है, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, उसको हम एक नंबर देंगे। निगोध में एक दो तीन चार अनेक भेद होते हैं, अब मान लेते हैं ना हम 10 तक तो निगोध के लिए, परंतु एक नंबर का जो ज्ञान है उसका नाम है पर्याय ज्ञान। तो पर्याय ज्ञान का आवरण है कि नहीं है,
नहीं।
है, बंधा था ना, हम उदय की कहां बात करें, पहले नंबर का जो देशघाती यहां स्पर्धक है उसका नाम क्या है, पर्याय ज्ञानावरण। पर्याय ज्ञानावरण बंधा था, एक नंबर का जो जघन्य ज्ञान है उसका आवरण करने वाला पर्याय ज्ञानावरण कर्म है, वो बंधा भी था, सत्ता में भी था। अब उस निगोध को वो एक नंबर का जो ज्ञानावरण है वो उसका उदय नहीं होगा, वो दो नंबर के आवरण का उदय रहेगा, यानी उसको दो नंबर वाला ज्ञान प्रकट नहीं, परंतु एक ज्ञान, एक नंबर का ज्ञान प्रकट होकर रहेगा,
मिनिमम रहेगा
उदय के समय, वो आवरण नहीं, इसलिए उसको निरावरण कहा। निरावरण यानी उसके आवरण नहीं रहे, क्योंकि उसका अगर उदय हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से, जो सबसे मिनिमम ज्ञान है उसका नाम है पर्याय ज्ञान। गुरुदेव हमेशा कहते हैं अक्षर में अनंत माँ भाव, यानी उसका उतना ज्ञान का उभार है। यानी जितने ज्ञान के भेद है उतने आवरण के भेद है, ये पहले में पहले नक्की करो। जितने ज्ञेय संबंधी हमें ज्ञान होते हैं उतने ज्ञेय संबंधी उसके आवरण भी ज्ञानावरण के उतने ही है। जो पर्याय ज्ञान है तो पर्याय ज्ञानावरण नाम का कर्म भी है मौजूद और उसका बंद भी हो रहा है, क्योंकि सभी स्पर्धक एक नंबर का कहाँ जाएगा? वो मिनिमम वाला वो वाला है, वहां से लेकर ऊपर तक के सभी स्पर्धक हम बांध रहे मान रहे, तो वो बंद भी है उसका सत्ता में भी। हाँ, जो जहाँ योगी कितना बंद होता है उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि एक नंबर का ज्ञानावरण है, एक नंबर का ज्ञानावरण का उघाड़ हो जाए, समझो उदय हो जाए, तो एक नंबर का ज्ञान भी पर्याय में प्रकट नहीं हो तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, जीव जड़ नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट एक नंबर का तो ज्ञान उघाड़ रूप रहेगा हमें हमेशा, नहीं उदिगत तो एक। अभी जो सौ तक जिसका ज्ञान है उसके पहले से सौ तक के आवरण का उदय नहीं है, आगे 101 वाले का उदय होगा आवरण का। एक नंबर का जो जघन्य में मिनिमम पॉसिबल ज्ञान है उसके आवरण का उदय नहीं होगा। हाँ, वो दो नंबर के आवरण का उदय हो सकता है, जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त का जघन्य जो ज्ञान है उस जीव को, वो मिनिमम ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। तो पर्याय ज्ञानावरण का उसका उदय नहीं होगा, उदय में नहीं आएगा, इसलिए उसको उस ज्ञान को निरावरण कहा है, जीव को निरावरण नहीं कहा है, ना ही जीव के प्रदेशों को निरावरण कहा है। समझ में आती है? वो प्रदेशों में पड़ा है और सभी प्रदेशों में पड़ा है, उनका उदय नहीं होगा।
ये तो उदय होगा वो अनुदय है, जब उदय होगा वो अनुदय, बोले फल देने की शक्ति नहीं है क्योंकि
उदय होगा, परंतु वो एक नंबर का आवरण था ना।
हाँ।
एक नंबर आवरण था, दो तीन चार नंबर आवरण रूप होकर उदय में आ जाएगा। एक नंबर को आवरित नहीं कर सकता है।
तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है
यानी इतना ज्ञान तो उघाड़ रूप है, तो पर्याय ज्ञानावरण का कभी उदय नहीं हो सकता।
और
बारह तक छह इसको क्षौक्षमी कहेंगे ना, आगे के ज्ञानावरणों का उदय है, एक नंबर के ज्ञानावरण का उदय नहीं है। तो वो स्पर्धक क्या हुआ क्या उसका, बांधे तो थे ना, तो वो दूसरे रूप होकर उदय में आ गए। जैसे हम देशघाती के हम कैसे कहते हैं, सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भविष्य है। तो एक नंबर के लिए दो नंबर भी सर्वघात करने वाले हैं, उसके लिए जो है एक नंबर का सर्वघात ही उसका, एक नंबर का आवरण हो जाए तो उसका पूरा घात हो जाता है, पर उस रूप से उदय नहीं है, दो नंबर वाले से उसका उदय है, यानी एक नंबर जितना ज्ञान खुला है। आवरण इन्हें कहने की पद्धति है, आवरण इन्हें उस संबंधी ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे आवरण का उदय है। जिस संबंधी हमें ज्ञान नहीं है, आपको जर्मन भाषा आती है बेटा? नहीं है? तो जर्मन भाषा ज्ञानावरणीय क्या उदय चल रहा है, और आपको हिंदी आती है मराठी आती है तो उसका क्षोभन चल रहा है। नहीं है, वो उदय चल रहा है। जितना ज्ञान नहीं है उतना उदय का ज्ञान है, जितना ज्ञान है वो क्षोभमिक ज्ञान है। क्या उदय का ज्ञान और क्षोभमिक अज्ञान में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न पूछो तो अच्छा है। उदय का ज्ञान में क्या लेना है, उदय का ज्ञान कहाँ तक है? बारहवें तक है, क्योंकि उसको केवल ज्ञान नहीं है। उदय का ज्ञान समय दृष्टि को भी होगा, अभी कोई समय दृष्टि है और उसके आपका ये कंप्यूटर का इसका कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उदय का ज्ञान कहेंगे। समय दृष्टि है, मन पर ज्ञान नहीं है, उनका उदय का ज्ञान है। और क्षौक्षमिक अज्ञान किसको कहेंगे? कुमति कुशुत और कुज्ञान को क्षौक्षमिक अज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान प्रकट है परंतु मिथ्या है, इसलिए सर्वश्रमिक अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान जो प्रकट है। मिथ्या ज्ञान में भी नहीं जानने वाले ज्ञान को उदय अज्ञान कहेंगे, मिथ्या दृष्टि भी जो कुछ नहीं जान रहा है उसके सबको हम औदय अज्ञान कहेंगे। जितना जान रहा है वो सर्वश्रमिक ज्ञान है, उसका उघाड़ है। अभी इसके लिए 5 और डिटेल में लेना पड़ेगा। हमने लिए थे भोपाल में, कहाँ थे भोपाल वाले
उदय
में उतना नहीं आएगा। जैसे द्विन्द्रिय जीवों के जितना ज्ञान का उघाड़ है, स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय संबंधी ज्ञान का उघाड़ है, तो उसका देशघाती का चल रहा है उदय। परंतु उनके लिए अभी हम सुन रूप से बात करेंगे, तो द्विन्द्रिय जीव को ग्रहणेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय मन संबंधी इन सभी का सर्वघाती का उदय है। अब असंगी पंचेन्द्रिय जीव है, 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का तो उघाड़ है, सूक्ष्म ज्ञान है, परंतु उनके मन संबंधी जिसको 9 इंद्रियावरण कहते हैं उसका सर्वघाती का उदय है, उसको मन संबंधी ज्ञान नहीं है। ख्याल में आते हैं ना, वो आवरण चल रहा है उसका। अभी उसे देशघाती में बहुत सारे है ना, देश अभी एक इंद्रिय जीव का भी ज्ञान जो है सूक्ष्म ज्ञान है, हमारा भी सूक्ष्म ज्ञान है, उसमें अंतर है कि नहीं? हम सब संगी पंचेंद्रिय, हमारे भी ज्ञान में हिना दिखता है कि नहीं? अभी वो सूक्ष्मता से उसमें एक एक आवरण के भेद को समझ लें, उसमें ऐसा ही घटित करेंगे।
कर्म प्रकृति का क्षय और उपयोग रूप ज्ञान में कर्म प्रकृति का क्षय ऐसे भी दो भेद क्या पढ़ सकते? जैसे अभी आपने कहा कि भी
फिर से
लब्ध, एक तो ज्ञान की पर्याय में वो इसको धारणा भी बन रही है लब्ध ज्ञान में।
और देखो आप लब्ध लब्ध कह रहे हैं ना, वो तो धारणा को लब्ध करने की पद्धति है, परंतु जो सौक्ष्मिक ज्ञान है वो लब्धि और उपयोग रूप होता है। लब्धि कहा, लब्ध में जुदी बात है, लब्धि का अर्थ है उसकी सौक्ष्म की योग्यता कितनी है। जैसे हमारी लब्धि कितनी है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जानने की हमारी शक्ति प्रकट शक्ति पर्याय में है, और उपयोग रूप अभी हम यह कर्मकांड का अभ्यास कर रहे हैं, ये लब्धि कहते हैं और ये उपयोग है। और आप जो लब्ध कह रहे हैं, जो धारणा में, धारणा भी नहीं कहते उसको, संस्कार नाम है, यथार्थ में उसको कहना है तो संस्कार। जो हमने धारणा तक पहुंचा हुआ ज्ञान, अनेक समयों तक उस ज्ञान की पर्याय में चलता रहता है, जैसे आपने सेव किया हुआ, आप जब चाहे उसको फिर उसको निकाल सकते, कौन सा सेव नहीं किया तो नहीं चल सकता। ऐसे जो धारणा तक पहुंचा है उसी को संस्कार रूप से चलेगा, संस्कार है इसलिए हमारा कार्य नहीं होगा, उसको उपयोग में लेंगे तो कार्य होगा, वो पांव पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला कार्य।
हाँ,
अभी इसको
धारणा में तो है, तो धारणा रूप का तो हमारा क्षय सब बना रहा है उस विषय संबंधी का, तो और उपयोग में अभी वर्तमान में वो नहीं है, तो वर्तमान में उपयोग में नहीं है तो उस संबंधी का भी वहां पर उस जाति का उदय है ऐसा कहने में आएगा?
नहीं, वो तो वो ज्ञान की पर्याय नहीं, उसका वो ऐसा नहीं कहेंगे।
नहीं,
आप ही को मैं उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ। आपका जो प्रश्न है, जो पर्याय में है ना, वर्तमान पर्याय पूरी कितनी उपयोग वो मिलकर वर्तमान पूरी पर्याय कहने में आती है। अभी हम कहते हैं एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 ज्ञान हो सकते हैं, उस संबंधी उनका सूक्ष्म चल रहा है ना, तो उपयोग रूप कितने हो गए? एक मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ है, एट ए टाइम उपयोग किस में चलेगा? एक इंद्रिय द्वारा उपयोग चलेगा, तो एक इंद्रिय के द्वारा उपयोग चल रहा है, तो क्या बाकी का उनका सूक्ष्म नहीं, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? उपयोग में नहीं, परंतु ज्ञान की नहीं, उदय नहीं कहेंगे वहाँ, तो सूक्ष्म चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि पूरी ज्ञान की पर्याय अखंड है कहेंगे। उपयोग रूप अलग अलग पर्याय, वो मिलकर पर्याय कहते हैं, अकेले उपयोग को पर्याय नहीं कहते, वो लब्धि उपयोग भावेंद्रियम जो इसकी परिभाषा है, सूक्ष्म ज्ञान को कहते हैं लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, उस कर्म का सूक्ष्म उसमें आ गया और उसके उपयोग रूप कार्य भी आ गया। अभी यहाँ हम देशघाती सर्वघाती को देख रहे थे, यानी जहाँ हम कहेंगे ना वो निरावरण ज्ञान का अर्थ क्या है, उसका आवरण का किसी भी जीव को उदय नहीं होगा, पर्याय ज्ञान के आवरण का किसी भी जीव को उदय नहीं होगा, मिनिमम इतना ज्ञान तो प्रकट रहेगा ही रहेगा। अब आप हम सब संगी पंचेंद्रिय, हमारे तो संगी पंचेंद्रिय तक के जितने एक इंद्रियों के जितने ज्ञान के भेद भेद के उसके सब हमारे सब वो आवरण के उदय नहीं है। हमारा पंचेंद्रिय तक का ज्ञान जिसको हम के आवरण रहे हैं, समझ में ना, उसका देशघाती का हमारा उदय चल रहा है। यानी हम उन ज्ञान जिनको जिनको जान रहे हैं ना, उसका उसका शोषण कहने में आता है। जितना नहीं जान रहे उस समय सर्वघाती का उदय कर। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना, पेज नंबर 190 पर पढ़ रहे थे हम, सेकंड पैराग्राफ। वहां लता भाग से लेकर दारु भाग के अनंत वे भाग तक जो स्पर्धक है वे देशघाती है। इनका उदय होते हुए भी आत्मा का गुण प्रकट रहता है। दारु भाग के अनंत भागों में से एक भाग को छोड़कर, क्योंकि वो देशभाग उसको छोड़कर शेष बहुभाग से लेकर अस्थिभाग शैल भाग के जो स्पर्धक है वे सर्वघाती है। इनका उदय होते हुए आत्मा के गुण का अंश भी प्रकट नहीं होता, यानी बिल्कुल प्रकट नहीं होता। यदि सर्वघाती का उदय हो जाए तो आत्मा के उस गुण का थोड़ा भी अंश प्रकट नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। यहां उदाहरण देते हैं, जहां अवधि ज्ञान का अंश भी नहीं पाया जाता वहां अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय जानना। ये तो सिंपल है ना, समझ में आ गई इसी बात है। हमारे अवधि ज्ञान है देशघाती प्रकृति, हमारे उसका सर्वघाती का उदय चल रहा है। मन परे ज्ञानावरण वो तो मुनियों का, वो भी किसी किसी के होता है मन परे ज्ञान, बाकी सबको उसका सर्वघाती का उदय चल रहा है। जिसको नहीं है उनको सबको उसका सर्वघाती का उदय चल रहा है। जहां अवधि ज्ञान भी पाया जाए और अवधि ज्ञानावरण का उदय भी पाया जाए वहां अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय जानना। मन परिज्ञान में भी ऐसा ही घटित करेंगे, इसी तरह अन्य प्रकृतियों में भी जानना। ये समझ में आती है बात। अभी जो अंतराय जो है वो सारे ही देशघाती प्रकृतियां हैं। अंतराय की पांचों प्रकृतियां वो देशघाती, उसमें सर्वघाती है देशघाती है, परंतु उसमें भी सर्वघाती का उदय कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो दान लाभ वगैरह वो अनादि से उसका क्षोभम रूप की भाव प्रकट है, कुछ ना कुछ अंश प्रकट है ही है सबका।
मतलब अवधि ज्ञान जैसा अंतराय कर्मों में नहीं
है? नहीं, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान किसी को है ऐसा उसमें नहीं है। ये उसके तो पुरुषार्थ को अन्य जो दान आदि वो सब प्रकट है कुछ ना कुछ अंश, क्योंकि क्षोभम भाव में हमने गठित किए थे वो पांचों क्षोभमिक भाव है और वो अनादि से क्षोभमिक है। अब उत्तर प्रकृति ने पहले मूल प्रकृतियों की बात करें, अभी उत्तर प्रकृतियों की बात करते हैं। मिथ्यात्व में क्या विशेषता है ये आप यहाँ हम देखें। मिथ्यात्व सर्वघाती है क्या देशघाती है? सर्वघाती है, अपना प्रतिपक्षी सम्यक्त्व का पूरा घात करती है। तो उसमें कौन कौन से हो गए यहाँ मिथ्यात्व में? सर्वघाती में केवल सर्वघाती होते, उसमें मिथ्यात्व में चालू नहीं हो सकते। हाँ, पर दारू के बहुभाग में पूरे यहाँ बहुभाग तक यहाँ नीचे तक नहीं आना, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व यहाँ से शुरू होगा। दारू के बहुभाग का भी छोटा एक बहुभाग एक भाग छोड़ दो, क्यों? क्योंकि वहां सम्यक मिथ्यात्व बनने वाली है और वो भी सर्वघाती। मिथ्यात्व तो सर्वघाती है ही, परंतु ये दारू के जो अनंत बहुभाग में से जरा ऊपर से शुरू होता है उसका, यहाँ से ऊपर के सारे ये मिथ्यात्व के हैं यहाँ पर स्पर्ध। और दारू का जो नीचे वाला भाग है यानी अनंत वे भाग का ऊपर का भाग वो समय मिथ्यात्व रूप से है, उसमें भी अनंत स्पर्धक हो गए और उसके ऊपर मिथ्यात्व के हो गए। और ये नीचे जो है ये सारे देशघाती है वो सम्यक प्रकृति के हो गए। सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति होने पर भी उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, क्योंकि वो बाद में तैयार हुए ना। मिथ्या तो यहां से यहां तक थी, यहां तक जब प्रथमोक्षम सम्यक्त हुआ तो उसमें से मिथ्या तो में से सम्यक मिथ्या तो भी तैयार हुई, वो भी सर्वघाती है और उसका अनुभव और घट गया और उसका यहां से यहां लेकर देशघाती स्पर्धक तैयार हुए जिसको हम सम्यक प्रकृति कहते हैं।
तो धार्मिक मिथ्यात्व में दारू वाले सर्वगति स्पर्धक,
हाँ दारू के नीचे वाले,
दारू के भी नीचे वाले,
दारू यानी बहुभाग का नीचे का भाग है सर्वघाती, यानी सर्वघाती का लोअर मोस्ट। जो अन्य सर्वघाती है ना, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, वो निद्रा सर्वघाती है, अनंतानुबंधी सर्वघाती है, केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उनका सर्वघाती का लोअर मोस्ट स्पर्धक यहाँ से शुरू होता है और मिथ्यात्व का लोअर मोस्ट स्पर्धक यहाँ से शुरू होता है सर्वघाती, समझ गए मतलब। और टॉप मोस्ट स्पर्धक तो जितना अपना अपना ऊपर चला जाए। ये मिथ्यात्व की विशेषता यहाँ बता रहे, देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे अभी 181 की टीका। मिथ्यात्व यानी दर्शन होने की प्रकृति है ना, उस प्रकृति के लता भाग से लेकर दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग तक देशघाती स्पर्धक है, वे सब सम्यक प्रकृति रूप है। दर्शन होने की तीन प्रकृतियां बताई, सम्यक प्रकृति, समय मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो यहाँ उन्होंने मिथ्यात्व के लिखा था परंतु वो दर्शन मोनी के लिखना योग्य, इसलिए ब्रैकेट में तिरछे लेटर में मेरी अपनी ओर से मैंने दर्शन मोनी लिखा, मिथ्यात्व में से ये तैयार हुई। तो वो समय प्रकृति कहाँ से कहाँ तक, लता से लेकर दारू के एक भाग तक, दारू के एक भाग को छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण के अनंत खंड करना, यानी वो अनंत बहुभाग के भी अनंत खंड करना, उसमें एक खंड प्रमाण जुदी ही जाति के सर्वघाती स्पर्धक है, वे मिश्र प्रकृति रूप जाना है, समय मिथ्यात्व प्रकृति है उसका नाम। दारू भाग के एक भाग को छोड़कर शेष बहुभाग से लेकर अस्थि भाग शैल भाग रूप जो स्पर्धक है वे सर्वघाती मिथ्यात्व प्रकृति रूप जाना है, यानी सर्वघाती के जो यहां से लेकर यहां तक थे वो सर्वघाती में से नीचे थोड़े से हैं, वो समय मिथ्या और बाकी सारे मिथ्या। समझ में आ रही बात, हम देखते हैं ना, देखो शास्त्र में भी ऐसा रहता है, ये मिथ्यात्व का उदय की बात करेगी, किसी को शैल वाले उदय चल रहा है, वो अस्थि के ऊपर यानी अत्यंत तीव्र अनुभव का उदय हो रहा है जिसको हम तीव्र मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसको तो कहेंगे ऐसे लोगों को उपदेश भी देना योग्य नहीं है। क्यों? वो तो आपको भी न लाएंगे, आपके भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जिसको अपने कल्याण की भावना भी नहीं है और उसके कल्याण का कोई उपदेश देता है तो उसको तो चीड़ आती है उसको सुनकर, उल्टा तो वो तो आपके स्वाध्याय में आपने अन्य चीजों में विघ्न करेगा तो उसको कहते हैं उपदेश भी देने योग्य नहीं है, ऐसा आता है शास्त्र में। भावदीपिका में तो कितना स्पष्ट लिखा है, जैसे हम दान देते हैं तो किसको दे रहे हैं ये भी जानने योग्य है, योग्य पात्र को देते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश भी क्या होता है जब हमको ये बात समझ में आती है ना तो ऐसा लगता है सब्जी इसको समझे, तो घर में जो कोई आता है ना उसको उपदेश देना चालू करते हैं। कहाँ गई है मुग्धा पूना की, पूना में हमने शिविर किए थे 96-97 में, बहुत सारे किए थे, 8 शिविर हवा बैठी है, 8 शिविर लिए थे ना, तो इन सब इनके सारे बच्चे, तभी कोई दूसरे में कोई तीसरे में कोई पांचवे में ऐसे सारे थे, 15 बच्चे आते थे वहाँ पूना के शिविर में, तो निमित्त से कार्य नहीं होता, ये नहीं होता, वो सब जो मेहमान आते थे उनको सिखाते थे। आज वो सारे बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहाँ रहता है, तो यानी हम भी क्या होता है ये जो हमें समझ में आता है तो जो कोई आता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु सामने वाला जी उसको समझने की पात्रता है कि नहीं है वो भी देखने योग्य है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए थे, मेरे ससुर जी को तो बहुत था कि उनको स्वयं तो साधना करते ही थे, सबको सिखाते भी थे, मतलब वो तो कुंभोज बाहुबली में जाया करते थे पहले में पहले, वहाँ एक समन्वय बने महाराष्ट्र थे, हाँ तो उनके पास इनके तो बहुत क्वेश्चन प्रश्न वगैरह होते थे, उन्होंने बोला आपको सच्चा धर्म सीखना है तो कांजी स्वामी के पास जाओ सोनगढ़, उन्होंने भेजा आपको, तो सबको तो इतनी कुछ पता नहीं था, केवल नाम सुना हुआ था उन्होंने, फिर वहाँ जाने के बाद वो सब चालू हो गया और उनके कारण हम भी उसमें आ गए। हाँ वो समन्वय बद्र महाराज ने स्वाध्याय का बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है, हमको भी वो ही बता देते, नहीं, हम तो डॉक्टर है, कहाँ हमको फुर्सत नहीं मिलती, जहाँ कहाँ फुर्सत मिले शास्त्र पढ़ो, दवाखाने में रखो, ट्रैवल करते ट्रैवल में रखो। हमने बोला उसकी अशुद्धि वो क्या करेगी, हम उसका पाप मुझे लगने दो, ऐसा कहते थे। ये उनके शब्द है, स्वयं कहते थे ये हम मुनि नहीं है, ये हम इतने सब गुरुकुल इतना सब हमने ये किया है, ये हमारा लिए परिग्रह है, ऐसा कहते थे। यानी वो अपनी सच्ची पोजिशन जानते थे, बहुत भद्र परिणाम। और हम यात्रा लेकर गए थे वहाँ कुंभोज बाहुबली में, ये पूरा हम 1000 लोगों की यात्रा लेके गए थे, 50,000 आदमी वहाँ इकट्ठा हुए थे उस जमाने में। ये बाबू भाई हुकुमचंद जी प्रवचन करते थे तो महाराज ऐसा एकदम प्रसन्न होकर सुनते थे। हमारे पास बड़े बड़े फोटो उनके उस जमाने के लिए था, धर्मचक्र में थे आप तो थे ना। कहने की क्या पद, कहाँ से उनका विषय निकला। हाँ जी, किसको संबोधन करना, क्या पात्रता की बात चल रही थी अपनी, स्पर्धकों के ऊपर से पात्रता की बात चल रही थी। तो हमारे पिताजी भी, ससुर जी एक आए थे डॉक्टर, उसको भी बताया रे बेटा ये जरा सुनो अभ्यास करो इसका। तो काका हम आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हम इसका अभ्यास करेंगे, अभी तो हमको कमाने के दिन ही कमाने दो ना। ये 15 सितंबर की बात है, हमारे घर में थे वो डॉक्टर, संडे का दिन था। गुरुवार 19 तारीख को न्यूज आ गई, बहुत बारिश थी, उनके डॉक्टर तो थे मगर खेती वगैरह लेके रखी थी उन्होंने, तो कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम कुछ हुआ था। खाना खाने को बैठे थे तो नौकर ने बुला के ये ऐसा ऐसा है तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा है, तो मैं आता हूँ, चलो खाना छोड़कर चले। हाँ पंप नहीं चल रहा था, तो फ्यूज निकालने के लिए अंदर हाथ डाला तो वहीं पर ऑन द स्पॉट शॉक लगकर मर गई। जो आदमी कहता है मैं बूढ़ा होने के बाद ये सब करूँगा, और जो स्वयं डॉक्टर है बिल्कुल हेल्दी यंग है, हम ऐसे ही सोचते ना, अभी इस बार नहीं हम आगे करेंगे, पोस्टपोन करते क्या करें। यानी हमें तो ऐसा भाव आता है ना कि सब लोग इसको समझे, इसलिए समझाना चाहते हैं। उन कभी कभी सामने वाला अपने को विघ्न भी करता है, ऐसा भी हो जाता है ना। ये अनुवाद की बात चल रही थी अपनी, देखो यहाँ सर्वघाती और देशघाती के बारे में मैंने मिथ्यात्व पर समझाया। अभी पेज नंबर 191 पर आते हैं, ये थोड़ा समय आवरणों में। आवरण वाले कर्म कौन से हैं, ज्ञानावरण दर्शन मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञानावरण चक्षु अक्षु अवधि दर्शनावरण, ये 7 5 अंतराय 4 संज्वलन पुरुष वेद, ये 17 देशघाती प्रकृतियां शैलस्य दारुलता भागरूप चारों प्रकार के भाव ने अनुभाग सहित प्रवर्तते। क्या कहना चाहते, जो प्रकृति देशघाती है उसमें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, तो उसमें चारों हो गए कि नहीं हो गए, ये कहना चाहते। वहां शैलस्य दारुलता भागरूप प्रवर्तते हैं, जहाँ शैल भाग रूप न हो वहाँ अस्थि दारुलता भाग रूप ही प्रवर्तते हैं। अभी इसमें बंद की भी बात हो सकती है, उदय की भी बात हो सकता है कि उसके अति तीव्र का उदय नहीं है तो अस्थि दारुलता भाव रूप भी उसका प्रवर्तते हैं, उस रूप उदय हो सकता है। बंद की भी बात अलग आती है, कहीं उदय की भी बात आती है। जहाँ अस्थि भाग रूप भी न हो वहाँ दारुलता भाग रूप ही प्रवर्तते हैं, और जहाँ दारू भाग भी नहीं पाया जाता वहाँ केवल लता भाग रूप ही प्रवर्तते हैं। यानी श्रेणी में आता होगा शायद याद होगा, तो वो तो देशघाती कर्म जिसको कहते हैं, ये जो है प्रकृतियाँ देशघाती, परंतु उसमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती दोनों का बंद हो रहा है। श्रेणी में क्या होता है कि उसका केवल देशघाती रूप से बंद हो रहा है। देशघाती में भी दारू और लता दो टाइप है, आगे चलकर मोनी में भी वो एक स्थानीय बंद होता है, ऐसा भी आता है उसमें। ये विशेषता है श्रेणी की, परंतु किस किस रूप से हो सकता है उसका यहाँ वर्णन है। अति विशुद्धि है वहां वो सर्वघाती रूप से बंद ही नहीं है, हृदय में भी नहीं आए, इसलिए इसमें ये 4 अलग अलग बात, यानी चारों स्पर्धक है, किसी को 3 टाइप के है, किसी को 2 के, किसी को 1 के।
ये तीन दो एक वाला ग्रुप भी श्रेणी में ही बनेगा और कहीं नहीं।
श्रेणी में वो तो दो और एक वाले तो वहीं पर बनेगी, क्योंकि उनकी सत्ता में भी नहीं है, उदय में भी नहीं, इस तरह वहीं पर बनेगा। देखो ये इन्हीं प्रकृतियों को केवल लेना है, वहां एक देशघातीकरण नाम का करण आता है, उसमें इन्हीं किस क्रम से उनका देशघातीपना बनता है उसके सारे विशेष वर्णन है। इन सत्र को छोड़कर देखो शेष रही प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति के बिना, क्योंकि सम्यक प्रकृतियों में लता और दारू है और मिश्र में वो दारू का जो अनुभव भाव है वो है, समस्त घाती कर्मों की प्रकृतियों के तीन प्रकार के ही भाव जानना ही लगाया। अभी उसमें जो सर्वघाती प्रकृतियां ले रहे हैं, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, पांच निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, बारह कषाय, इन 19 प्रकृतियों की, ये सब कैसी प्रकृतियां हैं? सर्वघाती प्रकृतियां हैं। उनके स्पर्धक सर्वघाती ही है, देशघाती नहीं। हमने यहां देखा था, लिखा था, सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। तो जो अभी हमने गिनी प्रकृतियां, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, पांच निद्रा वगैरह, उसमें शैल, अस्थि और दारू का अनंत बहुभाग इतने ही वहां पर स्पर्धक हो गए उसके, उसमें वो देशघाती वाले स्पर्धक नहीं पाए जाते। इस कारण जहां शैल भाग, अस्थि भाग और दारू भाग के अनंत भूभाग स्पर्धक पाए जाते हैं, वहां ये तीनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, अथवा शैल भाग को छोड़कर दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, अथवा शैल भाग, अस्थि भाग को छोड़कर एक ही प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। इस तरह तीनों प्रकार के भाव है, यानी वो मिथ्या तो भी असीमंद हो जाए तो शैल अच्छे वाला नहीं, परंतु वो बहुभाग वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये कहना चाहिए है। तो वो सर्वघाती ही, कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, है सर्वघाती। कहते हैं मिथ्यात्व का अंश भी कहीं पर हो, करण लब्धि हो या चपक्षेणी का अंत समय हो, ये जो कुछ है तो वो तो सर्वघाती, कभी देशघाती नहीं हो सके। कितना भी सूक्ष्म हो तो ये दारू तक आके ही रुकेंगे, क्योंकि उसके नीचे केवल ज्ञानावरण, कभी लता भाग और नीचे की भाग समान नहीं हो सकता, वो तो सर्वघाती रूप से ही रहा। हाँ, उसका अनुभव घटकर कम हुआ, परंतु वो देशघाती नहीं हो सकता। देशघाती प्रकृतियां ही वो देशघाती रूप से हो सकती है, उसका वो ऊपर का सब नष्ट हो सकता है अनुभव, और वो नीचे का अनुभव जैसा हो सकता है। कौन नहीं, अपेक्षा उसमें एक दूसरे के साथ नहीं लगती, अपेक्षा अपने प्रतिपक्षी के साथ लगती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अप्रत्याख्यान है वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा देशघाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनंतानुबंधी का प्रतिपक्ष कौन है? उसका तो सम्यक्त्व का घात करते हैं, अप्रत्याख्यान वो यानी किंचित प्रत्याख्यान यानी त्याग अनुव्रतों का घात करते हैं, प्रत्याख्यान संयम का घात करते हैं, और संज्वलन जो है वो तो देशघाती है, वो यथार्थ चरित्र नहीं होती, उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों। कशाम का आपस में अपेक्षा नहीं लगती है, ऐसा कभी नहीं होता, वो है सर्वघाती ही। किसका सर्वघात करते? अपने प्रतिपक्ष का।
तो जब जीव केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करता है, समय दर्शन के लिए पुरुषार्थ करता है, तो ये जो ज्ञानावरण आदि का जो नष्ट होता है, तो सर्वघाती रूप ही नष्ट हो जाते हैं, अनुभव कम होकर।
आप कहते हैं जीव केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करता है या सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ? तो दोनों का पुरुषार्थ में क्या अंतर है, पहले ये बताओ।
वहाँ तो सम्य दर्शन के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मिथ्यात्व का ना।
हाँ।
तो मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है, तो जब नष्ट होती है,
देखो एक पहले नक्की करो सम्य दर्शन का पुरुषार्थ कोई अलग है और केवल ज्ञान का पुरुषार्थ अलग है, ऐसा नहीं है, पहले ये नक्की करो।
हाँ, दो लिया, कोई भी एक हो, लेकिन जब जीव पुरुषार्थ करता है तो इनके जो नष्ट होती कर्म की प्रकृतियां, तो सर्वगाती रहती, तो सर्वगाती रूपी नष्ट हो जाती मन होकर के।
देखो नष्ट जब होती है तो क्षपणा में नष्ट होती है, एक बात तो क्षपणा में नष्ट, अभी दर्शन होने की क्षपणा होती है, चौथे पांचवे जहां कहीं होती है।
हाँ।
तो दर्शन होने की क्षपणा होती है, तो जब मिथ्यात्व की क्षपणा होती है तो मिथ्यात्व के सारे परमाणु समय मिथ्यात्व समय प्रकृति रूप टर्न होते हैं, सर्वघाती रूप ही रहेगा, वो कभी देशघाती नहीं होगी। सम्यक मिथ्यात्व की सपना होती है, सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु अनुभाग घटकर सारे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। पर वो प्रकृति बदल गई ना, वो कहाँ अपने रूप से रहे, मिथ्या तो रूप से रहकर क्या वो देशघाती हो सकते हैं? समझ में आती है बात? वो संक्रमण वो हो गया उसका। ज्ञानावरण का क्या, वो जब केवल ज्ञानावरण का क्षय हो जाएगा, अपने रूप से क्षय हो जाएगा, वो कुछ देशघाती नहीं होगी। हाँ, परंतु ये जो मति ज्ञानावरण वगैरह जो है उसमें जो बंध है उसको हम देशघाती करण में आ जाते हैं, उसका भी सारा क्रम है, कौन से पहले कौन से बाद में होते हैं। वो लब्धि सार पढ़ना, उसमें ये बातें हैं डिटेल। हाँ, ये देखो हम आए थे 192 पेज पर। ये अघाती कर्मों की बात कर रहे हैं अभी, 192 पेज पर अघाती कर्मों में लगा रहे हैं। एक देशघाती और सर्वघाती किसके भेद है? घाती कर्मों में। तो सातवां भेद ये क्या है, देशघाती के सर्वघाती है? वो आघाती है, देशघाती नहीं है। देशघाती सर्वघाती ये घाती के भेद है। वेदनीय कर्म आघाती है। हम आपको कोई भी प्रश्न पूछेंगे, आपको चौकन्ना रहना चाहिए। वो है तो आघाती है ना। तभी आघाती के बात बताएंगे। अवशेष आघाती कर्मों की प्रकृतियां घाती कर्मवत प्रतिभाग युक्त जानना। प्रतिभाग युक्त का अर्थ क्या है, वही वहां पर भी बताया ना, उसके ऐसे ऐसे अलग अलग थे ना, इसमें उसके भी हमने नाम देखे थे, चार भी देखे थे ना, यानी प्रशस्त प्रकृतियों में गुड़ खांड शर्करा अमृत, और अप्रशस्त में नीम कांजी विष हला। अब उसकी बात बता रहे, इनके स्पर्धक भी तीन भाव रूप ही प्रवर्तते ही लगाया। तीन भाव रूप का अर्थ क्या है, या तो चतुस्थान है अमृत है, अमृत है तो पहले स्पर्धक से लेकर वहां तक अमृत तक के सभी स्पर्धक हो गए, या तो चतुस्थान वाले हो गए, या त्रिस्थान हो गए, या द्विस्थान हो गए, उसमें एक स्थान ये नहीं होगी। देखो, अवशेष अघाती कर्मों की प्रकृतियां घाती कर्मयुक्त घाती कर्मवत प्रतिभाग युक्त जानना, इनके स्पर्धक भी तीन भाव रूप ही प्रवर्तते। इन अघाती कर्मों की प्रकृतियां पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति है, और घाती कर्मों की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही जानना। घाती कर्मों के स्पर्धकों के लता दारू अस्थि शैल नाम कहे। अब अघाती कर्मों की प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों के अन्य नाम है, उनका कथन करते हैं। ये नीचे लिखा 184 की टीका। देखो 184 की टीका पढ़ लेते। अघाती कर्मों के प्रतिभाग अर्थात शक्ति के भेद प्रशस्त प्रकृतियों में तो गुड़ खांड शर्करा अमृत समान जानना, जो अभी हमने देखे थे, आपके पास चार्ट भी है उसका। जैसे गुड़ खांड शर्करा ने मिश्री और अमृत अधिक अधिक सुख के कारण मिष्ट है, यानी मीठा उसी में अधिक अधिक है, वैसे गुड़ भाग खांड भाग शर्करा भाग अमृत भाग रूप प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक अधिक अधिक सांसारिक सुख के कारण है, क्योंकि उसमें वो तो अलौकिक सुख के बाद में उनके कर्म के अधीन नहीं है। अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक नीम कांजीर विष हलाल समान जानना। जैसे नीम कांजीर विष और हलाल अधिक अधिक दुख के कारण कड़वे हैं, वैसे नीम भाग कांजीर भाग विष भाग हलाहल भाग रूप अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक क्रम से अधिक अधिक दुख के कारण जानना, क्योंकि वो तो जीव में जो कुछ सुख दुख के निमित्त बनते उसकी अपेक्षा बता दी। वहां प्रशस्त 42 है, अप्रशस्त 37 है। यहां वर्णाधिक चार प्रकृतियां प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों में गिनी है। अब ये जो अघाती की बात वहां बता रहे, वहां प्रशस्त प्रकृतियां गुड़ खांड शर्करा अमृत रूप अथवा गुड़ खांड शर्करा रूप अथवा गुड़ खांड इस तरह तीन प्रकार के भाव रूप प्रवर्तती है। यहाँ तो उसके नाम लेकर उसकी बात कही, कहीं कहीं जो गुड़ खांड शर्करा अमृत कहेंगे तो उसको कहेंगे चतुस्थानीय, चार हो गए, जहाँ अमृत भी होता है वहां तो चार स्थानीय कहेंगे, और जहाँ गुड़ खांड और शर्करा रूप होता है उसको कहेंगे त्रिस्थानीय, और जहाँ गुड़ और खांड दो ही प्रकार होते हैं वहां कहते द्विस्थानीय। वो तो शास्त्र में बहुत सारी बातें थी, सातावेदनी के, द्विस्थानीय बंध के वगैरह वगैरह, तो उसका ये अर्थ होता है। अप्रशस्त प्रकृतियां, नीम कांजीर विष हलहल रूप, इसको चतुस्थानीय अप्रशस्त में कहेंगे, अथवा नीम कांजीर विष रूप, ये त्रिस्थानीय अप्रशस्त में कहेंगे, और नीम कांजीर रूप तीन प्रकार के भाव रूप प्रवर्तती है। यानी अगर हम साता रसाता में भी लगाते हैं तो साता वेदनी भी चतुस्थानी भी हो सकता है, त्रिस्थानी भी हो सकता है, द्विस्थानी भी हो सकता है। द्विस्थानीय साता वेदनी में इसका अनुभव कम है, ख्याल में आती ना, असाता में भी चतुस्थानीय ने अनुभव सर्वोत्कृष्ट है, असाता का अनुभव ज्यादा है, त्रिस्थानीय ने थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, असाता का द्विस्थानीय ने असाता का अनुभव और कम है। इस तरह उसके ये नाम और उसके स्थान बताए जाते हैं, कहीं कहीं नाम लेकर बताते हैं और कहीं कहीं द्विस्थानीय त्रिस्थानीय चतुस्थानीय ऐसा कहते हैं, अर्थ एक ही है, उसको अलग अलग पद्धति से कहने में आता है। कुछ प्रश्न है? हाँ, क्या उसमें एक स्थानीय नहीं होता देखो, आपका ऐसा है कि यहाँ तो प्रसन्नता रूप कुछ विषय चल रहा है और उसके अन्य ठिकाने कोई उसकी कुछ उसका नुकसान हो रहा है, क्या उसका असाता का उदय कहलाएगा? जीव उसका लक्ष्य करके दुख रूप परिणमित होता है तब उसका असाता का उदय कहेंगे, वो भले वहाँ आग भी लग जाए कुछ है वो तो उसका असाता का उदय नहीं कहेंगे, जीव उसका लक्ष्य करता है ना तब उसको कहेंगे, किसी विशिष्ट संयोग को असाता का उदय नहीं कहते, उन संयोग का लक्ष्य कर करके जीव क्या कर रहा है उसको कहेंगे उसका असाता का उदय। उसका लक्ष्य करके दुखरूप परिणाम है, इसको उसके साथ वो मोहनीय लगा हुआ है तो ही उसका हम कहेंगे तीव्र उदय या मंद उदय। अब यहीं रुकेंगे, बोलो 2400।